भर्तरं भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ऐसे वाल्मीकि जी को, रामायण को, भगवान श्री रामचंद्र को, हनुमान जी को, सबको प्रणाम करते हैं मंगलाचरण में। और भगवान के भक्तों का कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद लेकर आज की कथा को आरंभ करते हैं। कल हमने शुरू किया था पंचवटी से। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज से जटायु से मिलते हैं। जटायु की सेवा से बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने पिता के समान उसका अंत्येष्टि क्रम अग्नि संस्कार किया है। ये अद्भुत है कि भगवान श्री राम केवल मानव को नहीं लेकिन पक्षी पक्षियों से भी प्रेम करते हैं। वो तो सब प्राणियों के नाथ हैं, तो जटायु पक्षी को भी गोद में रखा अपने पिता के समान। ये भगवान राम का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और फिर कबंध नाम के राक्षस का उद्धार किया और उस राक्षस ने सुग्रीव से मित्रता करना और सबरी से मिलने का संदेश दिया। और उसने एक और भी बात कही थी कि असल में जैसे ही रावण लंका पहुंचा सीता को लेकर, उसने 8 राक्षसों को कहा, गुप्तचरों को, पंचवटी चले जाओ। राम और लक्ष्मण कहां जाते हैं, क्या करते हैं, इसके हमको जल्दी जल्दी खबर बताते रहो। रावण के गुप्तचर राम और लक्ष्मण के हर एक कदम कदम की गुप्तचरी करते थे, स्पाई थे। इसलिए कबंध ने कहा था, अभी आपको मालूम भी हो जाए कि सीता कहां है तो आप ऐसे करना काम के रावण को यह पता नहीं लगे कि आप तैयारी युद्ध की कर रहे हो। इसलिए अभी सुग्रीव के साथ मिलो और फिर आगे का प्लान बनाओ। कल बाहर जाते हुए एक भक्त ने मुझे कहा, भगवान पंपा सरोवर पे गए, छबरी से मिले थे, तो सबरी के जूठे बेर खाए के नहीं खाए। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, बड़ा सेवा की थी सबरी की, नहीं भगवान की। लेकिन अन्य पुराणों में ये वर्णन है, भगवान रामचंद्र कह रहे थे एक दिन कि मां कौशल्या ने मुझे प्रेम से बहुत पकवान भोजन बनाए खिलाया। सीता जी तो बड़े प्रेम और स्नेह से भोजन रसोई बनाती थी, 56 भोग। मैं तो जनक जी के घर में, सास के घर में भी बहुत मैंने प्रसाद माल खाया, लेकिन जो शबरी ने मुझे बेर दिए थे ऐसा स्वाद आज तक मेरे को नहीं मिला। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जाति से हीन है, नीच जाति की हुई है, लेकिन गुरु कृपा हुई है, साधु की सेवा का फल ये मिला कि प्रेम के बस, भगवान प्रेम के बस है, प्रेम के बस सबरी के जूठे बेर खाए, भूल गए ठकुराई। रामचंद्र ये भूल गए कि मैं भगवान हूं। और सबरी बेर को चुन के देखती थी कि खारा है तो फेंक देंगी, मीठा है तो भगवान को देंगी, तो ये भी भगवान ने स्वीकार किया था। तो आप देखते आइए, भगवान राम ने पहला मित्र एक निषाद गुह राज नीच जाति का पहाड़ों में रहने वाला उसको गले लगाया था। दूसरा वानर राज सुग्रीव को गले लगाया उसके बाद आकर, और अब जटायु को गोद में बिठाया। और यहां सबरी स्त्री जाति की हीन, उसके हाथ भगवान प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। तो ये भगवान को प्राप्त करने का अधिकार सबको है, ये भगवान श्री राम दिखा रहे हैं। भगवद गीता में इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, स्त्रियो वैशास तथा शूद्रास्ते पियान्ति पराम गतिम। पांच नाम लिए हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में, पापी, इस जन्म का पापी। कैसा पापी? बोला सौ पापी, सबसे बड़े पापी सौ इकट्ठा करो, उसमें से तीन पापी निकालो सबसे बड़े, उन तीनों में जो नंबर वन पापी हो वो पापी भी अगर मेरा भक्त बन जाता है तो उसको भक्त मान लो, साधु मान लो। अरे भगवान, पापी है उसको साधु कैसे मान ले? बोला साधु मान लो। क्यों? कितना टाइम लगेगा साधु बनने में? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण में धर्मात्मा बन जाएगा। मेरे पास आया तो उसको पवित्र होने में देर नहीं लगेगी। अरे पंडित जी लोग तो केवल कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, पवित्र हो गया बस। ओम पवित्रो वा पवित्र सर्वामसान गतोपि बा यसुन्ने पुनरीकाक्षम बाया बंत्रम सुचि सुचि श्री विष्णु। एक विष्णु का नाम लेने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो एक भगवान का नाम लेने से पापी एकदम पवित्र हो जाएगा। और फिर भगवान कहते पाप योनिया, पाप योनि का मतलब इस जन्म का पापी नहीं, कई जन्मों का पापी, पापियों के घर में पैदा हुआ है, कसाई के घर में पैदा हुआ है, फिर भी मेरा भगत स्त्री है तो भी, शूदर है तो भी, और वैश्य है तो भी, कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो परम भदगति को प्राप्त होगा। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, और श्री रामचंद्र ने ये करके दिखाया अपने जीवन में। सबरी तो भगवत धाम चली गई अपने गुरु की भक्ति करते हुए, राम जी का दर्शन करके, सुग्रीव से मुलाकात हुई, कल हमने ये चर्चा की थी, बाली का उद्धार किया भगवान ने, सुग्रीव को किष्कंधा का राज दिया, और चार महीने के लिए चतुर्मास्य, चार महीने बरसात के होते हैं भारत में, उसको चतुर्मास्य कहते हैं। इस चतुर्मास में साधु संत एक जगह पे रहते हैं, क्योंकि बरसात में ज्यादा आना जाना मुश्किल होता है, पानी होता है, नदियां होती हैं, तो साधुओं का अभी तक भी नियम है चार महीने एक जगह बैठ के भजन करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने कहा कि चार महीने सुग्रीव, अभी ढूंढा नहीं जा सकता सीता को, ये चैत्र महीने में बात कर रहे हैं, और चार महीने बरसात के गुजरे तब हम प्रश्वर्ण पर्वत की गुफा में जाके रहेंगे, राज में नहीं रहेंगे। और बरसात की मौसम जाने के बाद सुग्रीव को लक्ष्मण ने सावधान किया, और असंख्य वानर पूरे भूमंडल से, पूरी पृथ्वी से, चारों ओर से केवल वानरों की जैसे सागर हो वानरों का, पीले सफेद, बड़ी पूंछ वाले, छोटी पूंछ वाले, बहुत बड़े विकराल बड़े बड़े वानर आके चारों ओर बैठ गए। चार दिशाओं के वानरों को चार दिशाओं में भेजा गया। कल ये बताया था कि दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का जो लीडर था वो अंगद था, उनके साथ जामवन था। ये जामवन कई बार रामायण देख चुका है, कई बार सीता को ढूंढने जा चुका है पहले भी। ये जामवन तो ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न हुआ है, जामवन थोड़ी सी, ये राम कथा हर त्रेता युग में आती है, थोड़ा सा जगह का अंतर होता है, कभी यहां कभी वहां, लेकिन ये कथा हर बार होती है। तो जामवन कई बार ये सेवा कर चुके हैं। जामवन, अंगद और तीसरा इनके साथ है नील, ये विश्वकर्मा का बेटा है, बड़ा इंजीनियर है नील, और बजरंग बली हनुमान, और इनके साथ और 10-20 हजार बानर हैं, सेना बहुत बड़ी है। और कल हमने आपको इनको जटायु के भाई संपति, संपाति, जटायु का बड़ा भाई संपाति, उसमें कहा कि सीता लंका में है, सीता लंका में है, और ये समाचार मिलते ही समुद्र को देखते हैं तो समुद्र का कहीं भी एंड दिखता नहीं है, 100 योजन है, 100 योजन का मतलब 800 मील लंबा समुद्र है। हर एक वानर कुछ कह रहा था, मैं इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं। जामवन ने तो अपना बहुत बड़ा परिश्रम बताया कि मैंने जब जवान था तब तो मैं कई बार, वो समुद्र मंथन जब कर रहे थे ना देवता और असुर, उस वक्त जितनी औषधियां लाया था मैं अकेला लाके डाली थी, इतना बड़ा काम मैं अकेला कर सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। अंगद ने कहा मैं कर सकता हूं, लेकिन सौ योजन जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, पता नहीं वापस आने की हिम्मत हो या शक्ति रहे या ना रहे। जामुन कहते हैं नहीं, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे दल के मुखी हो, आप नहीं जा सकते, आपको जोखिम में नहीं डाल सकते। तब जामुन ने देखा, महावीर हनुमान आप चुप करके क्यों बैठे? और तब जन्म की कहानी बताई। जामुन कहते हैं महावीर आप तो जन्म लेते ही मां अंजनी के वहां से उठ के सूर्य को फल समझ के खाने चले गए थे, सूरज को समझा था कि फल है, और आपकी गति तो वायु और गरुड़ और मन की गति के बराबर है। मनुज्वम मार तुल्य वेगम, आपकी गति मन के और गरुड़ की और वायु देव के समान आपकी गति है। आपके ऊपर बहुत बड़े देवताओं के आशीर्वाद हैं। अब हनुमान को अपनी शक्ति याद आई, उठ के कहते हनुमान आप कहें तो मैं एक बार में मंदराचल पर्वत के ओ हजार चक्कर लगा लूंगा, गरुड़ को जाते हुए तेज गरुड़ भागता जाए मैं उसके चक्कर लगा लूंगा, और कहो तो मैं लंका को उठा के पूरी लाके राम जी के सामने रख दूं। अब तो हनुमान को अपना बल याद आ गया। उत्तरकांड में यह कथा है, राम जी ने अगस्त ऋषि से सब ऋषियों से पूछा था कि मेरी नजर में हनुमान के समान बलवान कोई नहीं, मैं इनको मेरी आंखों से रावण के साथ युद्ध में देखा था लंका में, फिर इस हनुमान ने सुग्रीव की सहायता करके बाली से रक्षा क्यों नहीं की? इस मेरे संदेह का, इस मेरे डाउट का निवारण कीजिए महाराज। अगस्त ऋषि ने बताया था कि हनुमान 11वां रुद्र है, शंकर जी का अंश है, हनुमान वायु पुत्र है, हनुमान की माता अंजनी भी अप्सरा है, देवलोक से शराप के कारण वानर जन्म हुआ है, पुष्का पंकज स्थली नाम था अप्सरा का, बृहस्पति की सेवा में हुआ करती थी, किसी कारण से उसको वानर बनने का श्राप दिया था, और केसरी नाम के बहुत बड़े वानर राज से उसका विवाह हुआ था, और जन्म से तो हमने जैसे आपको कहा हनुमान जी सूर्य को पाने के लिए चले गए, उस दिन सूर्य को ग्रहण लगना था, राहु आते हुए देखा तो राहु की तरफ हनुमान भागे, राहु डर के मारे भागा, इंदर 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 देखो तो सूर्य के ऊपर मेरा आज ग्रहण लगाने का दिन था, कौन दूसरा राहु उधर आ गया है। अब इंदर एरावत के ऊपर चढ़ के आया, इंदर के एरावत सफेद हाथी को देखते हनुमान समझा ये बड़ा सफेद अच्छा फल है, जब का इंदर की ओर, इंदर डर के मारे वज्र मार दिया हनुमान को, तब तक हनुमान का नाम अभी रखा ही नहीं था, हनुमान को वज्र लगा यहां जो यहां वो ये टूट गई जो उनका जाड़ा टूट गया जबड़ा, हनुमान नीचे गिरा, वायुदेव ने गोद में ले लिया, एक गुफा में बिठा दिया, हवा बहना बंद हो गई, वायुदेव ने नाराज हो गए, अब सब लोग सांस नहीं ले पाए, देवता परेशान हो गए, पेट सबके फूल गए, हवा बंद हो गई सबकी, क्या करें? ब्रह्मा जी क्या करें? बोला क्या करें, क्या आपने वायुदेव के पुत्र के ऊपर आक्रमण किया है, जाओ वायुदेव को शांत करो, चलो चलते हैं। अब तो ब्रह्मा जी देवताओं के संग जाके गुफा में अपने करमंडल से जल डाला, अब हनुमान जी सचेत हो गए, वायुदेव प्रसन्न हो गए, तब सबने कहा इनकी सेवा करनी है, इनकी सेवा करनी है, अब हनुमान का आपका नाम आज से हनुमान होगा, क्योंकि मेरे वज्र से आपकी ये जाड़ी टूट जबड़ा टूट गया है, आज से आपको हनुमान कहेंगे, और आपका अंग अब मेरे वज्र से कभी नहीं टूटेगा, इसलिए आपका नाम बजरंगी है, आपका अंग अब वज्र का बन गया, अभी मेरा वज्र आपको कभी नहीं तोड़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र आपका कुछ भी नहीं करेगा, सूर्य ने कहा कि मेरा 1% तेज में आपको देता हूं, बीमारी कभी नहीं होगी। यमराज ने कहा मेरा दंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप जो चाहो रूप धारण कर सकते हो। इतने उनको सबने वरदान दिए कि हनुमान देवता को ऐसे ऊपर उठाए, कभी किसी किसी ऋषि को इधर फेंक दे, किसी ऋषि को उधर फेंक दे, किसी पर्वत को ऐसे हिलाए, ऋषि सारे अंदर हिले। ऋषि ने कहा कि ये हमारे श्राप तो इसको लगेगा नहीं, तो जो तुम्हारे पास बल है तुम भूल जाओ, तुम्हें कोई याद कराएगा तुम्हें तब याद आएगा। तो हनुमान तो अगस्त मुनि कहते हैं महाराज रामचंद्र हनुमान को इस ब्राह्मण के कारण उसका बल याद नहीं था। और दूसरा हनुमान को सूर्य ने कहा था तुम बड़ा हो जाओगे तो तेरे को मैं शिक्षा दूंगा, तुम मेरे पास आना। सूर्य के पास जब हनुमान शिक्षा के लिए गया तो सूर्य देव ने कहा ये देखो ये वालखल या 70 ऋषि मेरे पास रोज चलते हैं मेरे रथ के ऊपर बैठे हुए, रथ के ऊपर जगह तो नहीं है, कहां बैठोगे? बोला मैं चलूंगा आगे आगे आपके रथ के साथ। बोला चलोगे तो तेरा मुंह मेरी तरफ थोड़ी होगा, चलता है तो आदमी आगे चलता है तो पीठ होगी। बोला नहीं मैं उल्टा चलूंगा, मुंह आपके तरफ करके चलूंगा और सुबह से शाम तक आपसे पूछूंगा, आप मुझे शिक्षा देते रहना। और ऐसे हनुमान रोज सूर्य के रथ के साथ सूर्य की तरफ मुंह करके उल्टा चलते थे तेजी से। और सूर्य से ज्ञान प्राप्त जब किया तो सूर्य ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा। बोला महाराज गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? बोलो तुम एक वचन दो मुझे। क्या वचन दो? बोला सुग्रीव मेरा बेटा है, तुम सुग्रीव को कभी मत छोड़ना, सुग्रीव की हमेशा सहायता करना। इसलिए हनुमान सुग्रीव को कभी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि सुग्रीव सूर्य पुत्र है और हनुमान सूर्य का शिष्य है, इसलिए गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया था। और क्योंकि पढ़ रहा था आज जामवन ने बल याद दिला दिया। अब हनुमान ने विराट रूप धारण किया, देखने में नहीं आ सकता इतना बड़ा रूप था। आगे एक जगह आपको बताएंगे जब जम्बू माली से लड़ाई करेगा कितना बड़ा रूप था, लेकिन अब आपको बताएं इतना बड़ा रूप हनुमान ने धारण किया और महेंद्र पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़ गया छलांग लगाने के लिए। जैसे पर्वत के ऊपर ऐसे पांव रखे तो नीचे पत्थर सारे दब जाएं और पत्थर के दबने से पेड़ नीचे गिरे और कहीं कहीं से झरने निकलें पानी के। और जब ऊपर चढ़ के ऐसे उड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब तो वायु देव का ध्यान किया है, सूर्य देव का भी ध्यान किया है, इंद्र देव का ध्यान किया है, भगवान राम का सुमरण किया है और उड़ने की तैयारी जैसे करने लगे तो पीछे जो पर्वत के ऊपर जोर लगा उस जोर के कारण पर्वत नीचे इतना धंसा कि अंदर ऋषि उठे बाहर निकले जो तपस्या कर रहे थे, गंधर्व थे बाहर निकले ऊपर से और पीछे इतनी वेग से ऊपर उड़े कि कई पेड़ टूटे और सीधे जाके समुद्र में गिरे। और आकाश के ऊपर 240 मील लंबा और 80 मील चौड़ा उसकी छाया थी जैसे कोई बादल है आकाश में है, कोई बहुत बड़ा बादल जा रहा है चांद को ढक के। अब हनुमान का आकाश में उड़ गए, आकाश में उड़ते हुए हनुमान को देवताओं ने देखा कि बल का इसका परीक्षा ले लेनी चाहिए कितना बल है। समुद्र ने अंदर उसके समुद्र के गर्भ में पर्वत है एक मैनाक, सोने का पर्वत है पूरा मैनाक। समुद्र ने कहा महाराज सागर से हमारा नाम सागर हुआ, आज उस सागर के वंश का भगवान रामचंद्र के काम को यह दास जा रहा है हनुमान, इसकी सेवा करनी चाहिए। मैनाक तुम जरा बाहर निकलो, हनुमान को कहो थोड़ी देर इसके ऊपर विश्राम कर ले, थक जाया होगा, लंबा सफर है, कुछ फल फूल उसको खाने के लिए दे देना। मैनाक ने कहा मेरे ऊपर भी वायुदेव का बहुत पुराना एक ऋण है, इंद्र जब पर काट रहा था पर्वतों के तब वायुदेव ने मेरे को समुद्र में गिरा दिया था, मेरे पर बच गए थे, इसलिए आज वायु के पुत्र की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मीनाक पर्वत से पानी से ऊपर उठा, हनुमान ऐसे जाते हुए छाती से उसको जोर से ऐसे धक्का दिया, मीनाक नीचे दब गया। मीनाक पुरुष के रूप में आदमी बन के आया, हाथ जोड़ के कहा महाबली मारुति नंदन सागर ने मुझे विनती की है, आपके पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, लंबा सफर है, थोड़ा हमारे ऊपर विश्राम कर लो, कुछ फल फूल खा लो, फिर आगे उठना। हनुमान ने ऐसे हाथ लगाया मैनाक पर्वत को, बोला आपका मैं सेवा स्वीकार करता हूं, लेकिन राम के काम में विश्राम नहीं करूंगा। राम कामा नहीं विश्रामा, और मैं सब बानुओं को पीछे कह के आया हूं कि तुम एक पांव पे खड़े रहो, मैं यूं गया और यूं आया, मैं रुकूंगा नहीं। ऊपर उठा हनुमान आगे, देवताओं ने कहा वाह बल तो बहुत ज्यादा है, बुद्धि की बुद्धि का भी परिचय लेना चाहिए, बुद्धि कितनी है। नागों की माता सुरसा, नागों की माता सुरसा ने आके समुद्र के बीच में मुंह खोल के खड़ी हो गई, ब्रह्मा का मुझे वरदान है, हमारे मुंह में आओ हम आपको खाएंगी। हनुमान ने कहा मां राम के काम को जा रहा हूं, सीता का पता लेकर राम को बता के फिर आपके मुंह में चला आऊंगा। बोला ऐसे कोई वापस आता है? अभी मेरे मुंह के सामने पड़ा है, अभी अंदर घुस जाओ। तो मां चलो जरा मुंह बड़ा करो, मैं बड़ा हूं। सुरसा 10 योजन मुंह करे, हनुमान 20 योजन, सुरसा 20 योजन, हनुमान 40 योजन। अब जब सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान एकदम छोटे होकर अंदर गए और वापस आए। बोला मां अभी आपकी इच्छा पूरी हो गई, मैं आपके अंदर से घूम के आ गया। अब सुरसा कहती है मेरा आशीर्वाद है बेटा, जाओ राम का काज करो। हो देवताओं ने कहो बल नहीं, बुद्धि भी बहुत है, इंटेलिजेंट है। अब हनुमान सुरसा से आगे आशीर्वाद लेके चढ़ा। एक और तीसरी बाधा, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, सिंहिका, क्या सिंहिका, छाया ग्रहणी उसको कहते हैं। छाया ग्रहणी का मतलब आकाश में उड़ते हुए पक्षी की जो छाया होती है, छाया को पकड़ लेती है। हनुमान ऊपर से जा रहे हैं, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया, अरे क्या हो गया, हिल नहीं पा रहा है हनुमान, हाँ मेरा बेग कैसे बंद हो गया, शक्ति तो पूरी है। नीचे देखती है मुंह फाड़ के छाया को पकड़ा है हनुमान की। ओ ये मासी और एक आ गई। हनुमान नीचे देखा, उसने मुंह बड़ा फाड़ा, जैसे उसने मुंह बड़ा किया, हाँ हाँ मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान छोटे बन के उसके अंदर चल गए, जाके उसके पेट से उसकी दिल में गए और नाखून से दिल को ऐसे तोड़ के चार चीर के फाड़ के नीचे गिराया। उस वक्त सिंहनी की मर गई और देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की। तो ये तीसरी बाधा को भी हनुमान ने पार किया। अब जाके त्रिकूट पर्वत की चोटी के ऊपर लंका में लैंड किया हनुमान जी ने। ये त्रिकूट पर्वत जो सोने का पर्वत है ना, उसका टुकड़ा है, नीचे गिरा था लंका में। त्रिकूट पर्वत जो जो पूरे का पूरा सोने का सॉलिड सोने का पर्वत है, मेरु पर्वत, उसका टुकड़ा है त्रिकूट। ये एक बार नीचे गिरा था, क्यों गिरा था ये बहुत बड़ी अपने आप में अद्भुत कथा है। लेकिन त्रिकूट पर्वत के ऊपर उतरा हनुमान। अभी तो शाम का समय हो रहा है, देखा चारों ओर से लंका को, सुरक्षित है, इसके अंदर जाना ही मुश्किल है, चारों ओर समुद्र तो है ही, जैसे आपके यहां पड़ा है, ये तो पहली सुरक्षा तो नेचुरल समुद्र की है। फिर सोने की दीवार है सॉलिड, चार दरवाजे हैं और दीवार के बाहर पानी के ओर बहुत बड़ा पानी की नदियां बनाई हुई है, इसके अंदर मगरमच्छ बैठे हुए कि कोई कूद के अंदर ना जाए। चारों दरवाजों को देखा, सैनिकों को देखा, लाखों 100,000 राक्षस उसकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान ने कहा शाम हो जाने तो अंधेरा हो जाए फिर मैं प्रवेश करूंगा, लेकिन छोटा बन के अंदर जाना चाहिए। सूर्य अस्त हुआ, हनुमान छोटा सा बिल्ली जितना रूप धारण किया, रहे तो हनुमान ही बंदर ही, लेकिन छोटा, कोई बिल्ली जितना बोलता है कोई उससे भी छोटा है। दीवार के ऊपर चढ़ गए, अंदर ऐसे उतरे, तब एक बड़ी भयानक राक्षसी ने कहा कौन हो बंदर, कहां आ गए, यहां किसने तुमको अंदर आने दिया। हनुमान ने कहा देखने के लिए आया हूं कि सोने की लंका कैसी है। बोला किससे गए, इजाजत ली है, राक्षस रह सकती है, तुम बंदर अंदर कैसे चले गए, आप हो कौन, मैं लंकनी हूं, लंका की वास्तु देवी हूं, लंका की रक्षा करना मेरा धर्म है। हनुमान ने कहा इतनी सुरक्षा, हाँ मच सुरक्षा सिक्योरिटी कितनी है रावण की लंका में कि इतनी छोटी बिल्ली के मच्छर भी नहीं घुस सकता है अंदर। परफेक्ट सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रावण का है। लंकनी ने कहा नहीं जा सकते हो, भला मेरे को घूमने दो ना। लंकनी ने उल्टे हाथ से हनुमान को थोड़ा ऐसे धक्का मारा। हनुमान ने कहा नहीं मानेगी, हे उल्टा हाथ दे मारा हनुमान ने, नीचे गिरी, गिरी मुंह से खून निकला। हनुमान ने बोला मैंने आस्ते मारा है, तुम स्त्री हो इसलिए मैं जोर से नहीं मारा है अभी। मैं तो नारी के हाथ ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। तब लंकनी कहती है मेरे को ब्रह्मा जी की बात याद आ रही है, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जब कोई वानर तुमको परास्त करे तब समझना कि राक्षसों का नाश होने वाला है, लंका का नाश होने वाला है। आज मैं समझ गई कि तुम वो वानर हो और ब्रह्मा का ये वचन सत्य हो रहा है, इसलिए बेटा मेरी आशीर्वाद है, जाओ जाओ घूमो लंका को। अब थोड़ी देर इस यात्रा को देखिए, एक भक्त, भगवान राम का भक्त है हनुमान जी, सीता माता भगवान की शक्ति है, भगवान की भक्ति स्वरूपा है और पूरा धन लक्ष्मी है, सीता लक्ष्मी है, सीता लक्ष्मी है ना। राम को छोड़ के रावण सीता को उठा के ले गया, इसका मतलब नारायण से लक्ष्मी को अलग करके भोगने का भाव है रावण का, और भक्त का काम है लक्ष्मी को वापस लाके भगवान की सेवा में लगाए। हनुमान उस भक्ति और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं जो रावण जैसे असुर, और जब एक रावण तब था, आज दुनिया के अंदर सारे ही लोग भगवान के सारे धन को, दौलत को, ऑपुलेंस को भोगना चाहते हैं, भगवान का भजन नहीं करना चाहते, सारे ही रावण के भाई। प्रभुपाद ने कहा था राम को छोड़ के लक्ष्मी को उठा के जाए वो रावण, भगवान का भजन कोई नहीं रखता है करता है, लेकिन पैसा सबको चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए और भोग करेंगे लक्ष्मी का, ये रावण की वृत्ति है, ये असुरी वृत्ति है। और भक्त उस वापस लक्ष्मी को भगवान के चरणों में लाना चाहता है, और अगर सीता भक्ति स्वरूपा है, भक्ति का स्वरूप है सीता, तो भक्त उसको प्राप्त करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम जब भक्त भक्ति को प्राप्त करते हैं भगवान के पास, तो रास्ते में बाधाएं आती हैं चार। भक्त इन बाधाओं के ऊपर कैसे कैसे कर सकता है, विजय कैसे प्राप्त करता है, ये आपके जीवन में सीखने का है। पहली बाधा क्या है, भोग की सामग्री। मीनाक पर्वत सोने का, फल फूल लाया, आओ आओ बैठो आराम करो। भक्त जब थोड़ी भक्ति करता है ना, तो लोग जाते हुए उसको कहते हैं महाराज नमस्कार, आइए बैठिए, हलवा पूरी भोजन कीजिए थोड़ा सा, और ये आपके लिए थोड़ी सी दक्षिणा भी है, लीजिए आप जरा सुख। हाँ भगत कहता है वाह वाह, आजकल तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ मिल रहा है। ये हो गया भोग में फंसना, भक्ति में, भक्ति में भोग में फंस गया। लेकिन हनुमान ने मीनाक को हाथ जरूर लगाया लेकिन भोग नहीं किया। भक्त को ऐसे संसार में सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उसमें फंस गया, अटक गया, बैठ गया, तो भक्ति नहीं मिलेगी। उसको हाथ लगाए, नमस्कार करे, भगवान की कृपा से अब मेरे को आगे बढ़ने दो। और आगे सुरसा, सु मतलब अच्छा, रस मतलब बहुत बड़ा रस। किस बात में दुनिया में हमको रस आता है, ये कहां से बड़ा हो गया, मैं इससे बड़ा हूं, इससे गाड़ी मेरी बड़ी है, इससे घर मेरा बड़ा है, इससे दुकान मेरा बड़ा है, इससे मकान मेरा बड़ा है। नहीं नहीं तुम बड़ा नहीं हो, मैं बड़ा हूं। अब सुरसा कहती है मैं बड़ी हूं, हनुमान कहता है मैं बड़ा हूं। वो 100 योजन 50 योजन वो 100 योजन, ये हो गई दुनिया में बड़ा बड़े बनने की चक्कर। और भक्तों में भी, मैं पुराना हूं, मैं सीनियर हूं, मैं 15 साल से किचन चला रहा हूं, मैं बहुत बड़ा रसोईया हूं। नहीं नहीं तुम बहुत नहीं, मैं बड़ी पुजारी हूं, मैं बड़ा पुजारी हूं। ये सुरसा, इसको ऊपर विजय कैसे प्राप्त की हनुमान ने, छोटा बन गया, छोटा बन के अंदर चला गया। तो जब ये जब सुरसा अहंकार जब सामने आए बड़ा बनने का, तब भक्त को छोटा बनना चाहिए। हाँ तुम बहुत छोटा बनना चाहिए, भक्त निम्रता करेगा तभी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी सिंह का ये छाया को ग्रहण करती है, ये ईर्ष्या है, एनवी है। देखो ईर्ष्या का अर्थ होता है अच्छे आदमी में काला दाग देखना, अच्छे आदमी में बुराई देखनी, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। तो छाया क्या होता है, आदमी का काला हिस्सा होता है, जो काले हिस्से को पकड़ ले, छाया को पकड़ ले, ये दूसरे के अंदर दोष देखने ईर्ष्या है। ये सिंह का ईर्ष्या है और ये ईर्ष्या हम सब के अंदर बहुत है। इस दुनिया में लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, दुनिया में लोग इसलिए दुखी है कि दूसरे के पास ज्यादा क्या क्यों है, और दूसरे किसी और के पास ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, मेरे अपने रिश्तेदारों के पास ज्यादा क्यों है, मेरे भाई के पास ज्यादा क्यों है, मेरी बहन के पास ज्यादा क्यों है। हाँ, सबसे ज्यादा दुख है कि हमारे अपने रिश्तेदारों के पास ज्यादा क्यों है। ये ईर्ष्या हमको हमेशा दुख देती रहती, इसका इलाज क्या है, ईर्ष्या कहां रहती है, हृदय में रहती है। हनुमान ने क्या किया, छोटा बन के हृदय को चीर के बाहर निकल के आया, उसको खत्म ही कर दी। दिल को जब तक साफ नहीं करेंगे इन छोटे बन के, तब तक ये ईर्ष्या भगवान की भक्ति नहीं करने देगी। और लंकनी चौथी कहती, अंदर क्यों जाते हो, चोर हो। हनुमान कहता, चोर है रावण तेरा मालिक, जो सीता चोरा का चोरी करके आया, मैं तो ढूंढने जा रहा हूं, मैं तो मालिक हूं, चोर कहां से हुआ। अब लंकनी कह रही है तुम चोर हो, अरे चोर तो रावण है ना, मैं कहां हूं चोर। जब भगवान की भक्ति करोगे ना तो लोग आपको कहेंगे, क्या सारा दिन भगवान का नाम लेता रहता, कुछ काम धंधा करता नहीं है। कौन सा काम धंधा करते हो, यही लक्ष्मी उठा के चलना है, राम को पीछे छोड़ने, यही तो धंधा कर रहे, और कौन सा धंधा कर रहे हैं। ये फाल्स प्रोपेगंडा है। ये लंकनी हर भक्त के को ये इस बात का अनुभव है, लोग कहते तुम अभी हमारे काम के नहीं रह गए हो, कहां जा रहे हो, सारा दिन हरे माला उठा के हरे कृष्ण बोलते रहते हो, किसी पार्टी में जाते हो, शादी में चलते नहीं हो, खाते पीते कुछ हो नहीं। ये लंकनी का भाव है, इसका इलाज क्या है, हनुमान का मुक्का, और मुक्का देने के बाद उसका मन बदल जाएगा, तब कहेगी आशीर्वाद है आप भक्ति करो, तो एक मुक्का देना जरूरी है। तो ये भक्ति में बाधाएं हैं सारी। अब हनुमान ने अंदर घुसते ही रात को ढूंढना शुरू किया, महलों लंका का वर्णन जो वाल्मीकि जी ने किया है, साथ साथ फ्लोर की बिल्डिंग सोने के बने, दीवारें हीरे मोती जड़े हुए, बल्ब लाइटें वाइटें नहीं थी, ऐसे हीरे माणिक मोती थे जो चमकते थे पत्थर के ऊपर, उसकी रोशनी हो रही थी। सब घरों के अंदर देख रहा है, भोग विलास चल रहा है, स्त्रियां पुरुष कैसे सोए हुए हैं। हनुमान ने थोड़ा सोचा, मैं ब्रह्मचारी लंगोट पहना हुआ कहां आया हूं, ये रात को सोए हुए पुरुष और स्त्रियों को क्यों देख रहा हूं। हनुमान थोड़ी देर आंखें बंद करके बाहर बैठे कि ऐसे तो नहीं है मेरा ब्रह्मचारी इन राक्षसों को देखने देखते, फिर सोचा कि मैं ढूंढूंगा तो सीता को, तो सीता तो स्त्री है, तो स्त्रियों में ही होगी, और कहां ढूंढूंगा। फिर वापस गया, देखा मेरे मन में कोई विकार नहीं है, रावण के महल को देखा, रावण के महल में कई स्त्रियों को देखा, मंदोदरी को जब देखा, मैं दानव की बेटी मंदोदरी रावण की मुख्य पत्नी है, उसको देखा तो बोला ये कहीं सीता तो नहीं है, लगती तो बहुत सुंदर है, मुझे सीता मिल गई, ऐसे सोचते। फिर सोचता है सीता राम के बगैर खाएगी पिएगी नहीं, ऐसे आराम से सोएगी नहीं, ये सीता नहीं हो सकती। हनुमान सा पूरी लंका के हर एक घर को ढूंढ के देख के थक गया, पुष्पक विमान के अंदर जाके खड़ा हो गया, उस विमान के अंदर का बाहर का सब अच्छी तरह से देखभाल के बोला, अरे सीता नहीं मिली, मैं वापस जाऊं, संपाति ने कहा था सीता लंका में, सीता मुझे मिली नहीं, मैं वापस जाऊंगा तो राम जी प्राण दे देंगे, राम जी प्राण दे देंगे तो लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे, और लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे और सुग्रीव को शर्म आएगी कि मैंने हमारे मित्र की मित्रता नहीं निभाई, फिर तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अब मैं वापस कैसे जा सकता हूं। अचानक दीवार के बैठे हुए दूर देखा, कुछ बहुत सुंदर बगीचा एक दिखाई दिया, अशोक पेड़ पड़े थे, अरे इस जगह को मैंने देखा नहीं, जरा जाके देखूं तो, बहुत सुंदर नदी बह रही थी सरोवर अंदर बीच में से। अब एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ के हनुमान कहते हैं, अभी सुबह होने वाली है, सीता होगी तो जरूर सूर्य को दर्शन करने और नहाने के लिए यहीं आएगी, इतनी देर में देखता है कि एक पेड़ के नीचे पीले कपड़े पहने हुए दुबली पतली एक स्त्री, आंखों से आंसू बह रही है, चारों ओर कुछ राक्षसियां बैठी हैं, किसी की एक आंख है, किसी का नाक इधर है, किसी का एक ही कान है। ये लिखा है वाल्मीकि जी ने कि ये राक्षसियां कैसी थी, और किसी के पेट में मुंह है, इधर ही मुंह है, दांत इधर पड़े हैं, कुछ ऊपर है नहीं, नीचे है नहीं। हनुमान सबको देख रहा है, मुख को देखा, आंसू बहते, बोलता दिखता तो मुख चंद्र है, यही सीता है, अब देखूं सुबह हुई तो हनु राम सोए से उठा, सीता की याद आई, काम इतना भाव था, उठ के 100 स्त्रियां पीछे, किसी के हाथ में चंदन है, किसी के हाथ में फूल है, किसी में हाथ में जल की झारी है, रावण के पीछे आ रही है। रावण ऐसे नशे में धुत हुआ, आके सीता को बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं सकता हूं, तुम मुझे स्वीकार कर लो, कहां यहां दुखी हो, चलो वहां तुम्हारी सेवा होगी। सीता ने एक तिनका लिया घास का, बीच में रख के बात किया। तिनका क्यों बीच में रखा? इसके ऊपर बहुत बड़ी आचार्यों ने टीकाएं लिखी है कि ये तिनका सीता ने इसलिए रखा कि मैं तुमसे सीधी बात नहीं करूंगी, बीच में तिनका रख के कर रही हूं, और तुमको मैं तिनके के समान भी नहीं समझती हूं। और एक बार तो इस तिनके के ऊपर राम जी ने ब्रह्मास्त्र करके इंद्र के बेटे के पीछे भेजा था जयंत के, उसको कहीं दुनिया में त्रिलोकी में जगह नहीं मिली थी, और ये राम जी एक तिनके से जब ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, तो रावण तुम अपने आप को मरा हुआ समझो। सीता जी ने बहुत रावण को थुथकारा है कि तुम ये मन से निकाल को कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं राम की हूं, राम के लिए रहूंगी, मैं तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करती, अभी भी तुमको कहती हूं कि राम दयालु है, तुम मुझे वापस राम के पास पहुंचा दो, तुम्हारे को क्षमा कर देंगे, नहीं तो तुम अपने आप को मरा हुआ समझो। अब तो रावण को क्रोध आ गया, सीता जी ने मुंह मोड़ लिया, राक्षसों को बोला इसको कैसे भी मनाओ, 10 महीने हो गए हैं, 12 महीने का मैंने आपको टाइम दिया है, 2 महीने में तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे को कटवा के पका के मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खा लूंगा, ये समझ लो। तो जो 100 स्त्रियां पीछे थी ना, वो रावण के पीछे खड़ी हुई सीता को कह रही थी, ये ऐसे ही है, इसकी बात तुम चिंता मत करो। वो ऐसे कभी कभी बच्चे नहीं करते, ऐसे करते हैं पीछे से हैं। वो स्त्रियां रावण की तरह, ऐसे है, तुम चिंता मत करो उनके। तब सीता कहती है, तुम्हारे अपने घर में भी तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, जिनको तुम्हारे साथ खड़े हैं ये भी तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम्हारे विरुद्ध है, तुमसे डरते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं है। और ये कह के रावण तो क्रोध भी आ गया, लेकिन मंदोदरी ने पकड़ लिया रावण को, बोला आपको प्रेम करना है तो हम प्रेम करना चाहती हैं, हमारे साथ चल के करो ना, इसको ये दुबली पतली सीता को छोड़ो, चलो यहां से। तो रावण को पकड़ के उसकी स्त्रियां घर ले गई। ये जो राक्षसियां बैठ के अब डराने लगी, तुमको मैं खा जाऊंगी, नहीं इसका मैं फीफड़ा मैं खाऊंगा, बोले नहीं 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 इसका दिल मैं खाऊंगी, बोले नहीं नहीं इसका मैं जिगर खाऊंगी। अब सीता रोती है कि ये क्या मुसीबतों के बीच में फंस गई हूं, अपने बालों का रस्सी निकाला, गले में डाला, अशोक पेड़ में ऊपर बांधा, मैं इससे अच्छा है तो मर जाऊं तो अच्छा है। तब अचानक उनका अंग फड़का, अच्छा सोगन लगा, नहीं नहीं कुछ अच्छा होना है। हनुमान देखता है कि सीता बहुत कष्ट में, मैं इसके पास जाऊं तो डर भी सकती है मुझे, मैं संस्कृत में बोलूंगा तो समझेगी, पंडित है तो ब्राह्मण भी हो सकता है, तो रावण आ गया होगा, मैं कौन सी भाषा बोलूं, क्या करूं, ऐसे सोचते हुए रावण ने कहा मैं राम कथा करता हूं, ऊपर बैठ के राम कथा करने लगा हनुमान। दशरथ राजा था अयोध्या का, 3 रानियां 4 पुत्र, अब तो विवाह हुआ, स्वयंवर हुआ जनकपुरी में, राज तिलक राम को देना था, उस दिन 14 साल का वनवास मिला। पंचवटी से रावण सीता को हर के ले गया, राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव से मित्रता कर ली, और उनका एक संदेशवाहक लंका में भेजा जो सीता को ढूंढने के लिए आया। ये सुन के सीता देख रही कि ये क्या बानर ऊपर से गा रहा है। तब हनुमान नीचे उतरा, सामने बैठा, बोला आप कुछ कह रहे थे? बोला मैं राम कथा कह रहा था, आप हैं कौन जरा? अभी हनुमान पक्का करना चाहता है कि यही सीता है कि मैं टाइम खराब कर रहा हूं। तब सीता कहती है, मैं जनक सुता हूं, मैं राम की पत्नी हूं, राम की प्रिय हूं, और राम के साथ आई थी, मुझे रावण यहां लेके आया है, समाचार पूरा सुनाया। अब हनुमान जी कहते हैं, तो तो हनुमान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के सीता से बात करने जाते हैं। सीता कहती है और हनुमान मुझे राम के बारे में बताओ। अचानक फिर सीता को ऐसे ध्यान आता, नहीं 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 नहीं, मैं कहां बंदर, ये कहीं रावण तो नहीं है, कोई भी रूप बदल के आ सकता है, तुम रावण हो। फिर मन बदलता है, नहीं तो बताओ, तुम बताओ तो फिर तो राम के बारे में मुझे बताओ, कैसे राम लगता है। तब हनुमान ने राम का वर्णन किया है, कितना वो सुंदर है, कितना मनोहर है, कितने उनके उनके नख चंद्रमा जैसे हैं, उनका मुख चंद्रमा जैसा है, उनके भुजाएं ऐसी हैं, वो हरे रंग का, हल्के से हरे रंग का है, और गोरा है लक्ष्मण जी। और फिर ये कहते हुए राम जी की मुद्रिका उठा के और जब सीता के हाथ में दी और सीता ने उसके अंदर राम देखा तो छाती से लगाया जैसे राम साक्षात सामने आया हो। और तब कहा कि बेटा आज तुमने मुझे ऋणी बना दिया, राम का संदेश लाए हो, बहुत बड़ा। सीता के आंखों में अब खुशी के आंसू हैं और हनुमान को देख रही है और तब कहती है अब देखो टाइम बहुत कम बच गया है, राम को जाके मेरा संदेश देना। दो बातें मैं आपको बताती हूं, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ राम को और मेरे को मालूम है, तुम ये बातें कहना उसको जाकर। पहला ये कहना, एक दिन हम चित्रकूट में मंदाकिनी में नहाकर खेलकर बाहर लेटे हुए थे आप मेरी गोद में, और उस वक्त एक कौवा बार बार आके मेरे को कुछ मार रहा था, चूंच। बैठे बैठे हमको नींद आ गई, आप भी सो गए, अचानक उस कौवे ने मेरी छाती के ऊपर पंजा मारा, खून आपके चेहरे के ऊपर लगा, आप जाग गए, आपने क्रोध से एक तिनके को उठाया, उसके अंदर ब्रह्म मंत्र पढ़ा, ब्रह्मास्त्र, कौवे के पीछे आपकी तरह वो ब्रह्मास्त्र, वो अपने वो जो जयंत था, इंद्र का बेटा था, कौवा बन के आया था, आज इंद्र उसकी सहायता न कर पाया, शंकर न कर पाया, वापस आपके चरणों में गिरा था। अरे एक कौवे के ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, अभी तक रावण क्यों जीवत, अभी तक रावण क्यों जीवत है, जाके बोलना। और एक और बात भी बता देना, किसी और को मालूम नहीं है, एक बार मेरे गालों के ऊपर उतर गया था रंग, आपने अपने हाथों से यहां रंग लगाया था, ये और किसी को मालूम नहीं है, राम जी को कहोगे तो उनको याद आएगा। हनुमान कहता ये तो सब मैं उनको कहूंगा, लेकिन फिर भी आप कोई निशानी दीजिए। तब चूड़ामणि अपने वस्त्रों से निकाल के सीता ने दी, बोला इसको देखकर राम समझ जाएंगे कि मेरे पिता ने दी थी, मेरे पिता को ये देवताओं ने दी थी, इंद्र के द्वारा मिली हुई है और मेरे को शादी के समय दी थी, ये ले लो। लेकिन बेटा तुम राम जी को कहना बहुत, अब तो हनुमान कहता है मां आप इतनी चिंता क्यों करती हो, अभी इसी वक्त आप कहो तो मैं आपको लेके पहुंचा दूंगा सीधा किष्कंधा राम जी के पास। सीता कहती आप इतने छोटे से बंदर हो कैसे मेरे को उठा के जाओगे। ओ हनुमान कहता माता जी आपको शंका हो रही है। हनुमान एकदम बड़ा रूप धारण कर लिया, महा ने देखा बोला हाँ अब तो मैं समझती हूँ आप ले जा सकते हो, लेकिन आप मुझे यहां से ले जाओ, रास्ते में कहीं लंबा सफर है, मैं गिर जाऊं समुद्र के अंदर तो राम जी को मिल नहीं पाऊंगी, ये तुम्हारे पीछे असुर आए, तुम इनसे लड़ाई करो, फिर मेरे को कहीं गिरना पड़ जाए अचानक, ये दो बातें तो छोड़ो। लेकिन एक बार अनजान में जबरदस्ती रावण मुझे उठा के आया था, आज मैं पर पुरुष को दोबारा स्पर्श करूं दोबारा पर पुरुष का, भले आप मेरे बेटे हो लेकिन ये सत्यव्रता मेरे सत्यव्रता धर्म के विरुद्ध मैं ये काम नहीं कर सकती। और फिर चोरी करके रावण मुझे वहां से उठाया, आप भी यहां से उठा के चोरी करके जाओगे तो इसमें कौन सी राम की बढ़ाई होगी। राम आए और रावण को यहां मार के मुझे लेके जाएंगे, उसमें राम की महिमा बढ़ेगी, ये सीता ही कह सकती है। रावण हनुमान कहता है मां सीता ये आप जैसी स्त्री कह सकती है और कोई स्त्री नहीं कह सकती है, जो 10 महीने से कैद में हो, खाना पीना नहीं हो, उसको कोई कहे कि तुम्हें उठा के तुम्हारे पति के पास ले चलता हूं और उस वो ले जा सकता हो तो वो देर नहीं करेगी, लेकिन सीता नहीं जा रही है। आज वाल्मीकि कहता है ये सीता के वचन है, ये सीता की पतिव्रता धर्म है और मैंने सीता का चरित्र वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अब हनुमान जी कहा मैं जाऊं मां, फिर मैं आज्ञा लूं आपकी, मां सीता ने कहा आशीर्वाद। हनुमान उठ के बोला थोड़ा भूख भी लगी है, सीता कहती एक दिन और रुक जाओ, मुझे आपसे बात करने में सुख मिल रहा है। हनुमान ने कहा मैं रुकता हूं, इतनी देर में हनुमान एक तरफ हो गया, त्रिजटा विभीषण की बहन आई, उन राक्षसी को बोलिए इसका नाम मत लो, मैंने अभी अभी स्वप्न देखा है, एक दूत राम का आया है पता लगाने के लिए बंदर, और लंका को आग लगाएगा। हनुमान ने बोला इसको किसने बताया, इसको कैसे पता लगाया मैं आग लगाऊंगा, अभी तो मेरा प्रोग्राम नहीं है। ये पहले कैसे बता रही है, इसको किसने समझाया कि मैं आग लगाऊंगा यहाँ। चलो ये कह रही है तो ये भी काम करते जाएंगे। हनुमान को प्रेरणा मिली, फिर कहती है आप इसको मारो मत, राम जी अब रथ के ऊपर चढ़े आए, चढ़ के आ रहे हैं आसमान से, और मैंने देखा रावण के रथ को गधे खींच रहे हैं, तेल पी रहा है और मरने वाला है, इसलिए अब सीता को कष्ट मत दो। त्रिजटा ये कथा बता रही है और हनुमान सुन रहे। तब हनुमान ने कहा आप यहां आया हूं तो पहले बल का पता लगाऊं कि शत्रु का बल कितना है, और यहां लिखा है वाल्मीकि रामायण ने अच्छा दूत वो है जो काम कहा जाए उससे ज्यादा समाचार लेके आए। मिडिल क्लास का दूत है जितना कहा जाए उतना ही करके आए, और थर्ड क्लास का वो जिसको कहो समझाओ फिर भी जाए और कुछ भी नहीं करके आए। तो हनुमान फर्स्ट क्लास का दूत बन के गया है। अब बोला ठीक है माता जी मैं तो कुछ फल फूल खा लूं यहां का, अब तो फल फूल खाऊंगा, पूरा अशोक पूरा बगीचा उखाड़ के फेंक के तोड़ के ऊपर बैठा जाके। अब जो वहां थे अशोक बगीचे वालों ने देखा एक बानर सीता से बातें कर रहा था और फिर सारे अशोक बगीचे को बिगाड़ दिया है। सीता को मुझे कौन है, मुझे क्या पता कौन है, तुम राक्षस हो, ऐसे राक्षस काम करते हैं, मैं तो किसी को नहीं जानती हूं, तुम्हारी चिंता है तुम करो, मुझे क्या पता कौन है। वो भागते हुए गए। मैं उस दिन बताया था कहीं और पुराणों में लिखा हुआ है, हनुमान ऊपर खा के फल फूल बैठा, अभी 6-7 घंटे हो गए थे, उड़ के भी आया था, बहुत फल फूल भी खाया। वो मैनेजर नीचे खड़ा, तुम कौन हो क्या करते हो, मुंह खोल के उसने कहा तुम क्यों कौन हो क्या करते हो, बैठे बैठे हनुमान ने ऊपर से सूचू किया और उसके मुंह के ऊपर, बंदर था क्या करेगा, और सीधा गया रावण के पास। रावण के बोला रावण को बोलता है मैनेजर कि आपके बगीचे को उजाड़ दिया, देखो मेरे ऊपर भी उसने पेशाब कर दिया। रावण बोलता है क्या मुसीबत लेके आए हो, कौन है ऐसा। रावण ने कुछ राक्षसों को बोला जल्दी करो जाओ उसको पकड़ के आओ बंदर को। वो 7-8 को आते हुए हनुमान ने देखा ऊपर से एक दीवार को धक्का दिया, उनके ऊपर मर गए। फिर जो सेनापति है रावण का, प्रहस्त उसका नाम है, उसका बेटा है जाम्बुली। हाँ? जाम्बुली कैसा है, जाम्बुली शराब पीता है, लेकिन वो कहता है शराब पीता हूं फिर सो जाता हूं फिर उठना पड़ता है, फिर बोतल को हाथ में उठ लेना पड़ता है, इसलिए टब एक शराब का भर के उसी के अंदर सोता है। जाम्बुली शराब के टब में सोया है, आंख खुलेगी फिर पिएगा फिर सो जाएगा। उसको किसी ने उठाया, उठो जाम्बुमाली उठो, रावण ने बुलाया है, लिखा है मैं क्या करूं। जाम्बुमाली को लेके आए परस्त के बेटे को, रावण बोला तुम सेना लेके रथ लेके जाओ, किसको मारना है, कौन है, इंद्र से लड़ाई करनी है। बोला नहीं एक बानर है। बोला मेरे की शर्म की बात है, बानर के साथ मुझे लड़को भेजने को, 80,000 सैनिक लेके जाओ। अब जाम्बुमाली जब वहां गया 80,000 सैनिक लेके, तो जाम्बुमाली पहले बहुत बड़ा होने लगा, अपने आप को बड़ा किया, हनुमान इतने बड़े हुए, जाम्बुमाली नीचे खड़े होके देखते गोल गोल क्या है, पता नहीं हाथ लगाया, फिर पीछे गया देखा गोल गोल क्या है, हनुमान ऊपर खड़े होके कहते ये मेरे घुटने हैं, मेरे घुटने हैं जहां तुम खड़े हो, अब मेरे चेहरे को देखना है। हाँ जाम्बुमाली इससे ज्यादा तो मैं बड़ा नहीं हो सकता, ये तो इसके घुटने तक मुश्किल से पहुंचा हूं। तब हनुमान कहते तुम नीचे जाओ मेरे चरण में पड़ जाओ, तेरे को जान बचानी है तो मैं क्या नहीं है, पीछे देखो 80,000 सैनिक है। हनुमान ने बोला वो कब के मैंने मार दिए, वो तो ऊपर से मैंने फेंक दी थी पूरे की पूरी पहाड़ उनके ऊपर फेंक दिया, मर गए। जाम्बुमाली पीछे देखता अरे कोई भी नहीं बचा मैं अकेला हूं। बोला नीचे जाओ, घुटने से नीचे चरणों में पड़ता है, वरना मैं नहीं लड़ाई करूंगा। उठा के हनुमान एक पत्थर दे मारा, जाम्बुमाली उधर ही मर गया। अब मंत्री के 7 पुत्र भेजे, जाओ पकड़ के लाओ, 7 आए, एक एक करके सबको हनुमान जी ने मार दिया ऊपर। अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार आया सेना लेकर, आकाश में उड़ते हुए अक्षय कुमार ने तीर मारा और छाती में लगा तीर हनुमान को। हनुमान बोलते है तो उम्र का छोटा, निशाना बड़ा अच्छा है, इसको मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, ऐसा वीर बहुत मुश्किल देखने में आता है, बड़ा अच्छा वीर है अच्छा निशाना है, लेकिन फिर देखा इसका तो बल बढ़ता जाएगा, नहीं मारूंगा तो ये मेरे को गिराएगा। हनुमान घूम के अक्षय कुमार के ऊपर से, यहां आपको एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर आज तक किसी के पास भी, किसी भी राजा के पास ऐसी सेना नहीं है जिसके ऊपर एक पैसा भी खर्च ना हो। जीरो बजट आर्मी राम के पास थी, जीरो बजट आर्मी। वानर सेना के लिए न घर बनाने की जरूरत, न तंबू लगाने की जरूरत, न खाना ले जाने की जरूरत, न गोदाम बनाने की जरूरत, न अस्त्र शस्त्र, न वर्दी पहनाने की जरूरत है। न वर्दी भी नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं चाहिए, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, हथियार भी खरीदने नहीं है, बंदूक भी नहीं है। पत्थर उठाएगा, पहाड़ उठाएगा, पेड़ उठाएगा और लड़ाई करेगा। सोएगा कहां? पेड़ के ऊपर सो जाएगा। एक रुपया खर्च नहीं पूरी आर्मी के ऊपर। ऐसी आर्मी आज तक किसी ने नहीं बनाई। ये रावण की जीरो बजट, ये राम की जीरो बजट आर्मी थी। और कभी कभी लोग, कृष्ण और राम के भक्त आपस में बैठते हैं ना, तब कहते हैं आपके भगवान ने गायों को चराया था ना, वो तो बहुत आसान था, बंदरों को चराया था राम ने, खाए थे। कैसे बंदरों को चरा के कटा चलाना है? एक बंदर भी संभालना मुश्किल है, इतनी बड़ी सेना बंदरों की कैसे राम जी ने संभाली थी। अब हनुमान जी को कुछ नहीं करना, आकर देखा तो ये अक्षय कुमार के साथ उसके रथ को तोड़ दिया, उसके घोड़ों को मार दिया। और फिर हनुमान ने ऊपर से, जितना बड़ा हनुमान था, ऐसे कैसे अक्षय कुमार के ऊपर गिरा? अक्षय कुमार हुआ हनुमान जो गिरा, न रथ घोड़ा और अक्षय कुमार कौन सा है पता नहीं लगा, सभी एक जगह खिचड़ी हो गई। अब मेघनाथ को, इंद्रजीत को बुलाया रावण ने, बोला एक बानर ने बहुत बड़ा उधम मचा दिया है, जाओ उसको पकड़ के आओ। मेघनाथ टंकार करता हुआ धनुष की आ रहा है, हनुमान ने कहा अच्छा है, ये भी आ रहा है, इसको देखें, युद्ध दोनों करें, एक दूसरे को कोई जीत ना पाए, ना हनुमान जीत पाए ना इंद्रजीत जीत पाए। इंद्रजीत ने कहा अब ठीक है, मैं ब्रह्म अस्त्र चलाता हूं, इसको बांध देता हूं। और एक रस्सी आई, ब्रह्म अस्त्र के रूप में हनुमान को बांधा। हनुमान ने कहा मुझे ब्रह्मा ने कहा है उसका अस्त्र बांध तो नहीं सकता है, लेकिन चलो इस बंध के जाके हनुमान एक बार रावण को देख तो लूं, है कैसा, उसे मुलाकात तो हो जाए। जैसे हनुमान को बांधा ब्रह्मस्त्र में, वो मूर्ख जो खड़े थे और असुर, वो रस्सी लाके उसने बांधने लगे। और ब्रह्मस्त्र का नियम है जब और कोई रस्सी बांधे को तो ब्रह्मस्त्र चला जाएगा। इंद्रजीत बोलता है अरे ये मूर्ख राक्षस, मेरा ब्रह्मस्त्र अब किसी काम का नहीं है, दोबारा मैं चला नहीं सकता हूं, और रस्सी से कैसे बांधेगा। लेकिन हनुमान चुप करके ऐसे बैठ गया। घसीटते हुए पकड़ के रावण के दरबार में हनुमान को लाया गया। हनुमान बोले तुम कौन हो बताओ? बोला सुग्रीव का दूत हूं, दूत हूं सुग्रीव का। सच सच बताओ कौन हो? सुग्रीव राम जी के साथ आया, राम का दूत हूं, लेकिन दूत हूं पहले कोई आसन तो दो, बैठूं ऐसे कैसे बात करूं भाई, मैं दूत हूं आया हूं तो कोई आसन तो कम से कम तो बैठूंगा कहां। बोला हमारे दरबार में पशुओं के लिए आसन नहीं है, बांदरों के लिए। बंदरों के लिए कभी आसन होते हैं? ओ हनुमान बोलता है अच्छा अच्छा, तो ओनली आसन या लेस देन एनिमल को देते हो? नहीं नहीं, लेस देन एनिमल आपको बांदर के नहीं देते तो बता, जो ओनली फॉर लेस देन एनिमल के लिए आसन होता है, पशु से जो हीन होता है राक्षस, उसके लिए आसन है, हमारे लिए आसन नहीं। कोई बात नहीं, हनुमान ने अपनी पूंछ को जरूर करके इतना बड़ा बनाया, उसके ऊपर बैठा। अब रावण के गले से ऊपर हनुमान जी अपने आसन के ऊपर ऐसे बैठ गए। अब बोला मैं राम का दूत हूं, आपको बताने आया हूं कि सीता उसको वापस दे दो, अगर आपको जीवित रहना है तो। ए अकेला मैं एक आया हूं, मैं सबसे छोटा हूं, उनमें से शक्तिशाली हूं, मेरे से बहुत बड़े बड़े वीर वानर उधर हैं और वो सब उस तरफ बैठे तैयारी कर रहे हैं, और जब यहां आएंगे तो आपका एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यहां रावण के देश को मारो, बंधे हुए भी इतना तुम शोर मचा रहे हो। विभीषण उठ के कहता है महाराज शास्त्र कहता है दूत को मारा नहीं जाता है, दूत को खंडित किया जाता है, बाल काट दिए जाते हैं, उसका अंग भंग किया जा सकता है, मारने का शास्त्र विभीषण शास्त्र ने कहा है, लेकिन ये बांदर है। बोला महाराज ये राम दूत है, अगर कह रहा है तो निश्चित रूप से इसको मारना ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है, इसका अंग भंग करना है, इनको बड़ा अपनी पूछ के ऊपर गौरव है ना, जलाओ इसकी पूछ। अब तो पूछ के ऊपर कपड़े बांधे, घास मिट्टी का तेल लगाया, ऑयल डालने लगे, हनुमान पूंछ को और लंबी करते जाए, और लंबी करते जाए, और लगाते जाए, और लंबी करते जाए। हनुमान कहते वो कह रही थी ना आग लगाना है, आज तो ये काम भी पूरा करके जाते। अब उसको शहर के अंदर घुमाओ, रावण कहता शहर के अंदर घुमाओ इसको, लोग देखें कि एक भी हमारे पास आएगा कोई असुरों के यहां तो हम उसको खत्म कर देंगे। हनुमान ने कहा लंका को घूम के देख लेता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद होगा बहुत हो गया, अब इनके बंध एकदम ऐसे बंधनों को तोड़ दिया, तोड़ के ऊपर चढ़ गया हनुमान। अरे ए, खुल गया, बोला बांधा हुआ कब था, मैं मेरी मर्जी से रुका हुआ था। अब हनुमान ने कहा जरा आग लगा के देखता हूं। आए उस वक्त सीता को बताया जाके त्रिजटा ने रावण की दरबार में हनुमान की पूछ के ऊपर आग लगा दी है। अब सीता हाथ जोड़ के अग्निदेव, अग्निदेव मैं पतिव्रता हूं, मैंने अगर आप राम के अलावा और किसी का कभी ध्यान नहीं किया है तो मेरे पुत्र वानर हनुमान की पूछ को मत जलाना। सीता ये प्रार्थना कर रही है और वहां वायुदेव कह रहा है मेरे पुत्र की पूछ कैसे जलेगी, मैं ठंडी ठंडी हवा चलाता हूं। हनुमान कहते आग तो बड़ी लग रही है, धुएं निकल रहे हैं, लेकिन मेरी पूछ के ऊपर लगता है कि किसी ने रेफ्रिजरेटर में डाल दिया, ठंडी हो रही है, ये मेरी पूछ ठंडी कैसे हो रही है, अरे आग लग रही है पूछ ठंडी हो रही है। हाँ, या तो ये सीता की या राम की कृपा हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं। अब तो ऊंचे एक महल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे से ऐसा महलों को जलाया, वो सोना पिघलने लगा, वो लावा की तरह अब चांदी सोने की दीवारें पिघलने लगी। एक विभीषण के घर को छोड़ के बाकी सारे घरों को जला दिया, और जलाने के बाद पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदा, पूंछ बुझ गई तब डर लगा, मैंने आग लगाई है कहीं, ऐसे तो नहीं है सीता को आग लग गई और जल गई हो, फिर तो मैं मूर्ख हूं, जिस काम के लिए आया था वो तो कहीं नहीं जल गई। फिर बोला उनकी कृपा से मैं बच गया हूं तो वो कैसे जलेगी, फिर भी डर लगा। भागते हुए अशोक वाटिका में गया, सीता जी को सुरक्षित देखा, प्रणाम किया, सीता जी ने कहा जल्दी राम को भेजना, ये संदेश देना अब तुम बेटा जाओ। अब हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़े, आकाश के ऊपर से छलांग मारी, जैसे ही महेंद्र पर्वत के पास पहुंचे ऊपर से ऐसा करने लगे, चिल्लाने लगे, पूछ को ऐसा फड़फड़ करने लगे, नीचे जामन नंगत कहते आ रहा है हमारा हनुमान आ रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, जरूर सीता का पता लगवाया है, ओ हनुमान का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, बजरंगबली की जय, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। इतनी देर में हनुमान महेंद्र पर्वत के ऊपर उतरा, नीचे आया, सबने कहा बहुत बताओ बताओ, बोला सीता का पता लग गया, लग गया, लग गया, ऊपर से कह रहा है लग गया पता लग गया, बोला नीचे जाऊंगा पता नहीं प्राण दे देंगे, प्राण मैं ना कहूं उससे पहले पता तो हो, सीता का पता लग गया। सीता अशोक वाटिका में इस तरीके, मैं तो जरा अच्छी आग भी लगा के आया हूं और काफी मैं राक्षसों का कुछ तो खत्म खत्म करके आ गया हूं। अब अंगद कहता है पता लग ही गया है तो आप अकेले गए थे, अब हम तीन चार पार और चलते हैं, रावण को मार के सीता को वापस लेके आ जाते हैं, और ये दो जो द्रेवड़ और मेंढा, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है पहले से, इसको कोई नहीं मार सकता है, और इनको ले चलते हैं, ये वो चलेंगे हमारे साथ। जामन कहते हैं हमको सिर्फ पता लगाने का कहा गया है, हमको पता मिल गया सीता का, हमको लाने का नहीं कहा गया था, ये समाचार राम को देना चाहिए, जल्दी करो। अब तो ऐसे आकाश से उड़े हैं सारे बानर तेजी के साथ, कहां पहुंचे, मधुबन में पहुंचे, किसकंदा में एक मधुबन है, ब्रह्मा जी की कृपा से बना है, जिसमें शहद ही शहद चूती है, और वो सुग्रीव का प्राइवेट है, उसमें दधिमुख नाम का सेवक रखा हुआ है। अब सारे बंदर उसके अंदर घुसे और घुस के मधु पीने लगे, उसने बोला क्या कर रहे हो, किसने कहा अंदर आओ, अंगद बोला चलो यहां से, ये भागता हुआ अंगद जाके कहता है सुग्रीव सुग्रीव सुग्रीव, मधुबन के अंदर अंगद जामवन नील हनुमान सारा पेड़ों के अंदर फल खा रहे हैं, मधु पी रहे हैं। सुग्रीव ने बोला तुम आए तो शिकायत करने हो, लेकिन लगता है कि वो सीता का पता लगा के आया, नहीं तो मेरे वन में जाने की हिम्मत नहीं करते, तुम खुद अच्छी खबर लाए हो, जाओ जाओ उनको बोलो कि आपको बुला रहे हैं, सुग्रीव जल्दी आओ। राम जी के पास बैठे हुए सुग्रीव कहते हैं राम जी निश्चित रूप से हनुमान सीता का पता लाया है, नहीं तो मेरे बगीचे में जाके ऐसे मधु पीने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अब तो वहां से वापस दधी का बोला मैंने गलती होगी, मैंने आपको रोका। अंगद ने बोला कोई बात नहीं, आपका काम था आपने रोका, गलती हमारी भी हो गई, लेकिन अब वो बुला रहे हैं तो चलते। अब वहां से आए वापस, आते ही सब बोले एकदम राम जी को सीता का पता लग गया, सीता का पता लग गया। राम जी ने बोला बहुत अच्छा पता लग गया, मुझे बताओ कैसे मिली कहां मिली। तब सबने हनुमान जी को आगे किया, हनुमान जी ने कहा सब समाचार दिया, ऐसे में गया कूद के, ऐसे सीता ने कहा है, सीता ने यह भी कहा कि तिनका आपने जयंत के ऊपर चलाया था कौए के ऊपर, और आपने गाल के ऊपर रंग भरा था, और देखो ये चंद्रकला मेरे को दी है। वो जब देखी राम जी कहते हैं ये जनक के सामने मेरे को दी, सीता को दी थी मैंने, उनके माथे में लगाई थी शादी के समय, मैं इसको पहचान गया। जैसे सीता मिल गई, राम के आंखों से आंसू आने लगे, हनुमान ने कहा मैं अच्छी तरह से वहां का पता भी लगा के आया हूँ, राक्षसों को अच्छी तरह से दंडित भी करके आया हूँ, सीता को आश्वासन भी देके आया हूँ कि राम जी आपको याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे। ये सब सुनकर राम जी कहते यहां सुंदरकांड समाप्त होता है। और राम जी कहते हैं अब सुग्रीव पता तो लग गया लेकिन समुद्र पार कैसे करेंगे, फिर निराशा। लक्ष्मण कहता है, सुग्रीव कहता है हिम्मत करेंगे तो निराशा। और सुग्रीव वाला मैं अंगद जामवन हनुमान नील ये मेंढा द्रिवड़ ये हम तो सब जा सकते हैं उड़ के, और आपको तो हम उठा के ले चलेंगे गंधे के ऊपर। राम लक्ष्मण को तो हनुमान अकेला ले जा सकता है, आप चिंता मत करो, यहां से चलने की तैयारी करते हैं, आप रावण को मरा हुआ समझो। अब उत्साह सबने बढ़ाया। राम जी ने देखा कहा 12 बजे का टाइम, दोपहर हो रही है, अभिजीत नक्षत्र है, ये विजय का नक्षत्र है, इसी वक्त हम यहां से आपकी सेना की तैयारी करो। और राम जी कहता है नील तुम कुछ वानरों को लेके आगे आगे सबसे चलो, और ध्यान रखना कहीं शत्रु पानी के सरोवर के अंदर विष न मिला दें, फल फूल को खराब न कर दें, आगे आगे तुम ध्यान रखते हुए चलो, और पीछे जामवन तुम चलो पूरी अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर, और राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर दो और महान वानर दलों को कहा। और बीच में हनुमान ने राम जी को उठाया और अंगद ने लक्ष्मण को उठाया और सुग्रीव बीच में, और यहां से ये बांदर वाहिनी सेना चली है हनुमान और राम जी की, और कुछ पड़ाव करते हुए समुद्र के तट के महेंद्र पर्वत पे आए, समुद्र के तट के ऊपर आके पहुंचे हैं। ये समाचार समुद्र के तट के ऊपर पहुंचने का गुप्त चरण जाके रावण को दिया है। रावण को यह समाचार मिला कि समुद्र के तट के ऊपर पहुंच गए हैं, एक वानर इतना उदम मचा के चला गया है, तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए, अब सभा बुलाई, सभी अपने मंत्री बुलाए, सभी अपने सेनापति बुलाए। रावण ने कहा देखिए बड़ी सेना लेकर राम और लक्ष्मण वानरों के समुद्र के उस तट के ऊपर पहुंच गए हैं, मैं समझता हूं कैसे भी वो समुद्र पार करके यहां आ जाएंगे और युद्ध निश्चित रूप से करना पड़ेगा, आप सब मिलके मुझे बताइए कि इस वक्त हमको क्या करना चाहिए, सोच विचार के हमको कदम उठाना चाहिए। और उस वक्त प्रश्न उठ के कहता लंकेश आप वानरों से डरते हैं, दो मानवों से डरते हैं, अब मुझे बोलिए मैं जाके सबको मार के आता हूं। कुंभकर्ण का बेटा निकुंभ बोलता है अरे आप क्यों चिंता करते हैं? हम जा रहे हैं। सभी ऐसे बोलने लगे रावण को खुश करने के लिए। तब विभीषण उठ के बोला लंकेश राम वहां नहीं आ गया, राम आपके सर के ऊपर समझ लो आ गया है, अभी भी जान बचानी है, राक्षस वंश की रक्षा करनी है, तो सीता को फल फूल लेकर और चलो हम आपके साथ चलते हैं और वापस राम जी के शरण में वापस कर दो, नहीं तो राक्षस वंश का नाश समझो। रावण बोला कुछ नहीं, मीटिंग को खत्म कर दिया। दूसरे दिन सुबह सवेले ब्राह्मण रावण की पूजा कर रहे हैं विजय के लिए, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर विभीषण गया, विभीषण ने बोला भैया पराई स्त्री को घर में लाना महापाप है और तुमने ये अपराध किया है, तब से लंका के अंदर सब उल्टा होने लगा है, हर एक चीज लंका में उल्टी हो रही है, जब से आप ये सीता को लाए हो 10 महीने में कोई सुख यहां नहीं है, अभी भी आप वापस सीता को करो नहीं तो राक्षसों का वंश खत्म हो जाएगा। रावण कहता भैया बुत मैंने आपको सुन लिया, आप जाओ अपने घर काम करो। रावण चिंता में है, दूसरे दिन मीटिंग फिर बुलाई और कहता है आज हमारा सौभाग्य है कि 6 महीना पूरा हो गया है, कुंभकर्ण भी नींद से जाग गया है, आज कुंभकर्ण भी हमारे सभा में आएगा। सभी फिर सेनापति बैठे हैं। कुंभकर्ण ने उठ के कहा तुम जब सीता को चुराने गए थे तो हमसे पूछा था क्या? जब चुराने गए थे हमसे पूछा नहीं था, अब जब आपत्ति आई है तब हम हमारे पास आए हो, गलत काम करके दुख उठाते हो, सबको परेशान करते हो। फिर कुंभकर्ण कहता है वैसे भी मेरे बड़े भाइयों मैं क्या करूं, काम उल्टा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो मैं इन सबको नाश कर दूंगा। तब तो अंगद ने कहा आप चिंता मत करो मैं बैठा हूं। प्रश्न ने कहा आप इनकी परवाह क्यों करते हो, जाइए जाइए आप तो सीता को भोग कीजिए आनंद कीजिए। तब रावण ने कहा मेरे को श्राप है कि मैं किसी को जबरदस्ती स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता, नहीं तो कब का मैं अपना मन अभिष्ट पूरा कर चुका होता, लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती हाथ लगाऊंगा स्त्री को मेरा सर फट के 100 टुकड़े हो जाएंगे, ये तो मेरे को ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया है और नल कुबेर ने भी श्राप दिया है, दो बार मैं शराब ये भोग चाहूं, अभी ये नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे डर भी लग के बोलता नहीं है, डर लग रहा है, बोलता है अभी केवल दो महीने बचे हैं, 10 महीने हो गए हैं, मैंने 12 महीना का सीता को टाइम दिया है, 2 महीने तक अगर राम यहां ही आ सकते तो सीता अपने आप उनको भूल जाएगी। उसने फिर कहा है कि वो मेरे को स्वीकार कर ली, अपनी बात ऐसे करके उनको कह रहा है। अब विभीषण उठ के बोला फिर कि भैया ये सब आपको कह रहे हैं ये आपके शत्रु हैं, ये राम के पराक्रम को नहीं जानते हैं, एक उनका वानर वानर आया था आपके, ये पूरी लंका को आग लगा के चला गया है और वो कह रहा था मेरे से बड़े और हैं। तब प्रश्न बोला अरे हमने उस वानर के बाद ध्यान नहीं दिया, हम जरा अस्वस्थ थे, नहीं तो उस वानर को पकड़ के मार ही दिया होता। अब तो इंद्रजीत को क्रोध आ गया, इंद्रजीत ने कहा ये चाचा हमारा कायर है, ये वानर हमारे साथ रहने के योग्य नहीं है। तब रावण ने कहा कि तुम ऐसे जो कह रहे हो तुम तो मौत के दंड तुमको देना चाहिए, मृत्यु दंड, लेकिन तुम हमारे भाई हो इसलिए हम तुमको माफ कर सकते हैं। अब गदा उठाई विभीषण ने, अपनी 4 मंत्री उसके साथ हुए, माली के पुत्र है इसके बड़े दादा के, बोला मैं अपना घर परिवार जो है आपका संग सब छोड़ के जा रहा हूं, मैं अनर्थ के साथ नहीं रह सकता हूं। और वहां से विभीषण उठे, आकाश मार्ग से 4 मंत्रियों के साथ महेंद्र पर्वत के ऊपर ऐसे अंतरिक्ष में खड़े होके नीचे सुग्रीव ने देखा, ऊपर से कह रहे मैं रावण का छोटा भाई हूं, विभीषण मेरा नाम है, मैं राम जी के शरण में आया हूं, मैंने बहुत समझाया रावण को सीता वापस दो, मेरा तिरस्कार कर दिया इसलिए मैं उसको छोड़ के घर परिवार छोड़ के राम के शरण में आया हूं, राम को यह समाचार दीजिए। सुग्रीव राम जी के पास जाके कहते हैं ऊपर राम रावण का छोटा भाई विभीषण आकाश में खड़ा है, आपके शरण मांगता है, लेकिन राक्षस असुर है, राक्षस का भाई है रावण का, कहीं यहां आके हमारा भेद लेने तो नहीं आया है। राम जी ने बुद्धिमानी करके सब दल को बुलाया, सब जो लीडर थे उनको बुलाया, बोला ये सुग्रीव जो कह रहा है शरणागति, इसका क्या करना चाहिए। अंगद ने कहा इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसको बंद करके रखा जाए, अच्छी तरह से इसकी जांच पूछताछ करनी चाहिए, उसके बाद इसको अपने साथ मिलाना चाहिए। हनुमान कहते हैं मैं गया था लंका में, ये आपका हितेशी है, इसकी बेटी त्रिजटा और इसकी पत्नी सीता को हमेशा आश्वासन देती रहती है, बाकी राक्षसियों को मना करती है, सीता की सेवा तो पहले से कर रही है, मेरे को भी रावण जब मारने के लिए कह रहा था तब विभीषण ने कहा था दूत को नहीं मारना चाहिए, इसमें अच्छे गुण है, ये असुर नहीं है, उसका भाई बराबर है, लेकिन आपका भक्त है, इसको शरण में लेना चाहिए। अब राम कहते हैं दोष हो पाप हो लेकिन एक बार कोई मेरे शरण में आ जाता है और कह देता है कि राम मैं तेरा हूं, मैं उनको सब तरह से सुरक्षा देता हूं, ये मेरा वचन है। सुग्रीव तुम सुग्रीव उसको मत देखो कि विभीषण कैसा है, तुम मेरी तरफ देखो कि मैं कौन हूं, मेरे शरण में आया है, मैं उसको नाक नहीं कर सकता हूं, ये मेरा वचन है। इदम मे व्रतम, ये मेरा व्रत है, सर्वधर्मान परित्यजय, ये भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ये मेरा व्रत है, आप जो कहते हैं वो पापी है उसको शरण में नहीं लेना चाहिए, आप कहते हैं वो अच्छा है इसलिए शरण में नहीं लेना चाहिए, वो कैसा भी है वैसे भी कोई दूध से धुल के फिर कोई थोड़ी किसी के शरण में आएगा, भाई शरण में आएगा कोई कमजोरी होगी तभी आएगा ना, कुछ नहीं है तभी तो मेरे पास आया है। ये बहुत बड़ा अद्भुत शरणागति है विभीषण की। अब राम जी ने कहा नहीं मैं निश्चित रूप से विभीषण को अपने शरण में लूंगा। विभीषण नीचे उतर के आया, अभी भी कुछ वानर कह रहे हैं पता नहीं है तो रावण का भाई, कहीं हमारे को मुश्किल में न डाल दे। तब राम जी ने सबके सामने पूछा बताइए विभीषण क्या बल है रावण का, कैसी सुरक्षा है उनकी। अब विभीषण बोलने लगा महाराज रावण को ब्रह्मा जी का वरदान है, देवता नहीं मार सकता, असुर नहीं मार सकता है, गंधर्व नहीं मार सकता है, केवल मानव और वानर मार सकते हैं। उसका भाई कुंभकर्ण अकेला इतना बलशाली है कि सबको अकेला मार सकता है बड़ा, और इंद्रजीत इंद्र को भी पराजित करके आया था, और अगर वो पूजा करके अपने रथ के ऊपर बैठ गया तो वो किसी को दिखाई भी नहीं देगा, और ऐसे प्रहस्त आदि बहुत बड़े बलवान है ये मैं जानता हूं, और ये सुरक्षा है, और हनुमान ने जो बताई थी वैसी सुरक्षा बताई। तब वानर ने कहा ये बात तो सत्य कह रहा है। तब राम जी कहते हैं विभीषण ये राक्षसों के बल, ये राक्षसों का बल आपने सुनाया, इन सब के होते हुए इन सब को मैं अकेला यहां बैठा हुआ मेरे पांव के अंगूठे से नाश कर सकता हूं, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, लक्ष्मण जाओ समुद्र का पानी लाओ, अभिषेक करो, विभीषण तुम आज से लंकेश हो, तुमको लंका का राज दिया मैंने। अब तो वानरों ने कहा लंका का राज विभीषण को दिया, इसका मतलब राम मरेगा तब ना, इसका मतलब हमारी विजय होगी ना, राम ने कह दिया है तो हमारी विजय होगी, उनका उत्साह बढ़ गया ना। तभी किसी ने कहा कि महाराज अगर रावण अभी आ जाए और कहे कि मैं आपके शरण में हूं तो क्या करोगे। राम मुस्कुरा के कहते हैं सुग्रीव रावण आ जाएगा तो अभी मेरा अयोध्या का राज पड़ा है, मैं रावण को दे दूंगा, शरण में कोई भी आएगा तो मैं ले लूंगा, हम तो वन में रह जाएंगे, हमें क्या करना है। अब सुग्रीव को भगवान ने अपना सखा मान लिया, अपना दास बना लिया, लंकेश बना लिया, उसको कोई लंका के राज की इच्छा नहीं थी, ऐसी जगहों पे मिलता है। अब भगवान कहते हैं समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण ने कहा कि समुद्र की प्रार्थना करनी चाहिए, बैठ के पूजा करनी चाहिए। भगवान राम ने कहा पहली बार सलाह मांगी है, अभी तो मित्रता की है इसके साथ, इसकी सलाह नहीं मानी तो नाराज हो जाएगा। सुग्रीव विभीषण आपकी क्या इच्छा, बोला ठीक है पूजा करके देखो। 3 दिन पूजा की, कुछ के रास बचा के समुद्र से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, तो ये ऐसे समुद्र मानने वाला नहीं है, एक बाण दे मारा अंदर से समुद्र के अंदर ऐसे जैसे सुनामी जैसी लहरें ऊपर उठने लगी, सब डरने लगे चारों ओर से, लाओ दूसरा ब्रह्मास्त्र। अब तो ब्रह्मास्त्र लगा के राम जी ऐसे समुद्र के ऊपर खड़े हैं, लक्ष्मण रोक दिया कि त्रिलोकी की नाश हो जाएगी, आप इतना क्रोध मत कीजिए, इतनी देर में समुद्र अंदर से मानव रूप धारण करके आया, हम तो मूर्ख हैं, हम अनजान हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए, कृपा करके हमको जीवित दान दीजिए, आपको समुद्र पार करना है, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जा सकते हो, हमारा जल किसी को आपका, लेकिन फिर भी मर्यादा करो और आपका नाम पूरे विश्व के अंदर हो तो इसके ऊपर आप एक सेतु बांध दो। मैं आपको बताता हूं आपकी सेना में नल और नील हैं, ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये पत्थर डालते जाएंगे, पेड़ डालते जाएंगे, इसके ऊपर सेतु बनेगी, आपका नाम हो जाएगा, आप सेतु बना दीजिए। अन्य पुराणों में लिखा है ये नल और नील ये बड़े उत्कंड बानर थे, ये क्या करते थे, कोई पूजा करता था शिवलिंग की उसको उठा के पानी में डाल देते थे, कोई सालंगराम की पूजा करता था महाराज उठाओ पानी में, महाराज परेशान हुए बोला ये वानर किसी चीज को पानी में डाले वो ऊपर तैरती रहे डूबे नहीं, इनको ये शराब दिया हुआ था, आज पत्थर डालेंगे तो डूबेंगे नहीं। अब तो ये नल नील पत्थर डाले तो एक पत्थर उधर जाए, अरे आपस में पत्थर मिलेंगे कैसे। ओ विचार किया, क्या लिखा, एक पत्थर के ऊपर रा लिखा, दूसरे के ऊपर म लिखा, दोनों अंदर डाला रा म, ए पत्थर आपस में जुड़ गए, सीमेंट से नहीं रा म जुड़ गए पत्थर। अब तो सारे बड़े बानर पत्थर लाने लगे, पेड़ डालें और सब जुड़ते जाएं। राम जी दूर बैठे हुए देख रहे थे। राम जी ने 2 पत्थर उठाए और ऐसे डाले और डूब गए, किसी और ने देखा नहीं, हनुमान तो राम को देख ही रहे थे, राम जी को, हनुमान मुस्कुराते हुए गए राम जी ये तो आपके नाम से पत्थर तर रहे हैं, जिसको आप हाथ से छोड़ोगे वो कैसे तरेगा, आपने हाथ से किसी को छोड़ दिया तो वो कैसे तरेगा, वो तो डूब ही जाएगा, ये तो आपके नाम से तर रहे हैं अब। तब ये भी एक कथा भी लिखी है, बड़े और छोटे में कोई अंतर नहीं है भगवान की सेवा। हनुमान बहुत बड़े पत्थर उठा के आ रहा था, एक छोटी सी गिलहरी स्क्वेरल होती है ना गिलहरी, वो क्या करे समुद्र में जाए पानी भिगाए वापस आए रेती सैंड के ऊपर, फिर सैंड लेके और पुल के ऊपर डाले। हनुमान आते हुए बोला बीच में से हटो, तेरे क्या इस रेती से पुल बनेगा, देखती नहीं है इतने बड़े पत्थर उठा के आ रहे हैं, हटोगी कि नहीं हटोगी। उसके पूछ के ऊपर हनुमान ने पांव रखा, पूछ उसकी लंबी हो गई, गिलहरी की पूछ लंबी है। गिलहरी रोती हुई राम जी के पास गई, राम जी ने गिलहरी को उठा के हाथ में ऐसे पीठ के ऊपर ऐसे करने लगा, तुम रो क्यों रही हो। बोला मैं आपकी सेवा कर रही थी, मैं मिट्टी उठा के अपने शरीर से आपकी पुल के ऊपर डाल रही थी, हनुमान ने मेरे को डांटा, मेरी पूंछ को लंबा कर दिया। बोला उसको क्या सजा दे, बोला उसकी पूंछ लंबा कर दो। भगवान ने हनुमान को बुलाया, हनुमान बड़ा आप बड़ा पत्थर उठाते हैं, आप में बड़ी शक्ति है, ये छोटी है छोटे काम कर रही है, लेकिन सेवा तो मेरी कर रही है ना, मेरी सेवा दोनों की बराबर है। और तब हनुमान, जब भगवान राम ने ऐसे हाथ लगाया था ना, वो स्क्वायर गिलहरी के ऊपर पांच भगवान के उंगलियों के निशान है, देखे पूरे सफेद और काले पांच निशान पड़ गए, और गिलहरी की पूंछ लंबी और हनुमान जी बाबा की पूंछ थोड़ी लंबी हो गई। अब यहां अन्य बहुत कथाएं पुराणों में ऐसी हैं अद्भुत के, वहां सेतु बंद लगने लगा, अब तो डर लगा कि अरे पुल भी बन गया। अब पुल के ऊपर विभीषण को भेजा पहले लंका की तरफ, तुम जाके सुरक्षा करो कि कोई पुल तोड़े ना वहां से राक्षस। अभी विभीषण गदा अपनी उठा के लंका की तरफ पुल के ऊपर खड़े हो गए। अब पुल के इस तरफ से वानर सेना चलने लगी, आगे फिर हनुमान जी ने उठा लिया राम जी को, अंगद ने लक्ष्मण जी को उठाया, दूसरे तरफ सबेल पर्वत की तलहटी में आके एक समुद्र नीला दिख रहा है पानी का, और लंका में एक तो सोने की चमक रही है गोल्डन लंका, लेकिन बीच में 80 किलोमीटर में पीले रंग के बांदरों की सेना है पूरी। 80 किलोमीटर में बानर सेना पूरी ने छावनी लगाई अपनी सबेल पदर के पर्वत की तलहटी में। अब आपस में चर्चा करने लगे तो क्या करना चाहिए। एक सुक नाम का स्पाई था, एक जासूस था, रावण ने कहा तुम ऐसे करो सुग्रीव को जाके मेरा संदेश दो, सुग्रीव तुमसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, सीता के लाने आने में तुम्हारा कुछ जाए नहीं, तुम अपने देश वापस चले जाओ। ये सुक ऊपर आके पक्षी रूप में सुग्रीव सुग्रीव, राम बोलता है राम, रावण बोलता है रावण बोलता है, तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तुम वापस चल जाओ किसकंदा। तब तक बानरों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के नीचे लाए और नीचे लाके उसको मारने लगे, बोलते राम राम रक्षा करो। राम जी बोला इसको कौन हो, बोला मैं दूत हूं रावण का, तो दूत को मारना नहीं चाहिए। अंगद बोला ये दूत नहीं है, ये जासूस है, ये स्पाई है, डंडा मारो इसको, बोला इसको बांध के रखो जब तक हम उधर नहीं पहुंच जाते हैं, उसके बाद इसको छोड़ेंगे। फिर भी उसने पूछा सुग्रीव आप मेरे को उत्तर तो दो, मैं रावण को क्या बोलूंगा। सुग्रीव ने कहा रावण को बोलो तुम्हारे को राम मारेंगे और तेरी लंका को नाश करके फिर मैं किसकंदा जाऊंगा, तुम्हारे मारने के लिए तो मैं आया हूं, तुम्हारे जो कोई मित्रता करने थोड़ी आया हूं, और तुमने बड़ा अपराध किया है, दूसरे की स्त्री को उठा के आया, तुम तो मारने के योग्य हो, ये जाके समाचार दे देना। अब ये जब वापस गया सुक उधर, तो सुक ने जाके रावण को कहा आप मेरे को मारना मत, मैं आपको सत्य बोलता हूं कि सुग्रीव ने तो आपको कहा है कि आप मारने के योग्य हो, लेकिन राम बड़ा दयालु हुए, मेरे को पकड़ लिया था, वो सब मार रहे थे, राम ने मेरे को जीवित दान दे दिया, लेकिन मैंने उनका बल देखा है। बोला शुक्रशाली तुम जाओ पूरी सेना की जासूसी लेके आओ, क्या कर रहे हैं। दोनों बंदर बन के आ गए, दोनों बंदर बन के सेना में आए। विभीषण ने बोला ये बंदर नहीं है ये असुर है, सुख को सारी है, पकड़ लिया दोनों को, दोनों को पकड़ लिया, फिर दंड देने लगे, दंड देने लगे तो राम जी ने के पास ले गए। राम जी ने कहा तुमको सब पता लगा क्या है सेना में, नहीं पता लगा तो और भी देख लो, नहीं समझ में आता है तो विभीषण से पूछ लो, तुम जाके मेरी तरफ से रावण को कहना कि अभी तक भी तुम्हारे पास एक चांस है, कल सुबह तक अगर सीता नहीं दे सकते हो तो कल हम आपका आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, जाओ जाके समाचार दे दो, हम मारते नहीं है आपको। सुकसारण वापस आके बोलते हैं महाराज बानर का रूप धारण किया था आपके भाई विभीषण ने, पत्रा पकड़वा दिया, मार देते हमको, लेकिन राम जी ने हमारी रक्षा की है, शरणागत जय श्री राम। उधर बोलते हैं रावण ने थप्पड़ मारी होगी कि ये क्या बोल रहा है, वहां से राज जय श्री राम कहां से सीख के आ गया। बोला महाराज वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो कल आक्रमण करेंगे आपके ऊपर। ये अपन सुंदर कांड वहां खत्म हुआ है, ये चल रहा है लंका कांड युद्ध कांड। अब भगवान लंका में पहुंच गए हैं, अब आगे युद्ध कैसे होगा, रावण को कल अपन मारेंगे, सीता जी वापस राम जी से मिलेगी, और फिर राम जी वहां से चल के वापस अयोध्या पहुंचाएंगे, राम जी का कल राज तिलक करेंगे, परसों उत्तरकांड के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहां विराम देते हैं। बजरंग बली हनुमान की, श्री राम लक्ष्मण की, गौर प्रेमानंदे हरि। तो ये रामायण भक्त कहते हैं हमारे पास बहुत सुंदर वाल्मीकि रामायण है अंग्रेजी भाषा में। अभी हम इसमें से 50-70% आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें इससे ज्यादा 100% लिखा हुआ है, कुछ हमको भूल जाता है जो नहीं बता पा रहे, किसी की इच्छा हो तो बाहर मिलेगी, भक्त कहते हैं ले लीजिएगा। और ये भी बहुत सुंदर बच्चों के लिए रामायण का कलरिंग बुक है, बच्चे घर में शोर करते हैं, आपको काम नहीं करने देते हैं, तो ये उनके हाथ में और रंग लेके देना, वो ये करते रहने, आप अपना काम करते रहना। वो राम से बोलेंगे आप काम करना, वो राम राम करेंगे, काम अच्छा है कर लो। हरे कृष्ण। रघुपति राघव।